اگلی ٹپ لیجئے، برادرانہ حقوق کی ادائیگی. برادرانہ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی، ہیومن بیس پہ، المسلم اخو المسلم، مراد یہ کہ دنیا میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا معاملہ ہو. ایک مسلمان بھائی سے خوش ہوگا کہ اسے اس کے پسندیدہ تر نام سے پکارو. شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو لقب سے نہیں کنیت سے پکارتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو، کیونکہ لقب سے پکارنا اچھا نہیں لگتا. آپ بھی دیکھ لیجئے، کنیت ہوتی ہے بچے کی نسبت سے، جیسے ام فلاں، ابو فلاں، تو ہمیشہ بندے کو اپنے بچے کا نام سن کر خوشی ہوتی ہے. لقب عموماً برے ہی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دوستوں نے دیے ہوں. تو لقب سے نہیں پکاریے بلکہ کنیت سے پکاریے. کوئی مسلمان بھائی آئے تو خندہ جبینی سے اسے ملاقات کریں، یعنی اسمائلی فیس. آپ کا ماتھا بڑا اسمائلی فریش ہے، شکنے نہ ہوں، تیوری نہ چڑھی ہو. آپ ریلیکس فیس کے ساتھ کسی کو دیکھے نا، یقین کرے کسی کو تیوریاں چڑھا کے کولڈ ڈرنک پلانے سے زیادہ یہ بہتر ہے. کیا آپ آتے کو دیکھ کر خوش تو ہوں، اسمائل تو آپ دیں. پھر اسی طرح سے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے. اسے بات چیت پر ابھارو، یعنی یہ موقع دو کہ وہ اپنے بارے میں بتائے، کہ اپنے حالات اور عام و خاص امور زندگی بتائے، یعنی ہلکے پھلکے زندگی کے جو دکھ سکھ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کسی سے مشورہ لیں، کسی کو رائے دیں جس کے پوچھنے میں کوئی حرج نہ ہو. یعنی بس اتنی بات کسی سے پوچھے جس میں حرج نہیں. اس کے امور و معاملات پر توجہ دو، یعنی ٹیک انٹرسٹ ان ادرس. جو مسلمانوں کے امور سے دلچسپی نہ لے وہ ان میں سے نہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتاتے ہیں، یہ سورۃ توبہ کی 71 ہے. پھر اس طرح ایک حق یہ ہے کہ کسی پرانی بات پر اسے ڈانٹو ڈپٹو نہیں. یہ بھی ایک بڑا برا اثر خاندانوں میں ہوتا ہے، خاص طور پہ بھائی بہنوں میں. وہ بچپن کی بات یاد کر کے، اچھا تم ایسی تھی نا، تم نے اسے میرے سے یہ کیا، تو اس سے لوگ چڑ کھاتے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کو ان کی بچپن کی کسی بات پہ ڈانٹے. کبھی آپ دیکھیں چھوٹے بچے کی کوئی بات آپ ذرا اپنی دوستوں میں بتائیں تو بچے مائنڈ کرتے ہیں، آپ کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں گے کہ ماما آپ کیوں بتا رہی ہیں. تو ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں جس سے اگلے دوسرے کا دل دکھی ہو. پھر اس طرح طنز سے اسے تنگ نہ کرو. فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ طنز کرو، جب اس سے کوئی وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. تو پھر کیا سیکھا؟ کہ دوسرے انسانوں کے حقوق دیجئے. دیکھیے اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، مومن کون ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. آپ نہیں پسند کرتے کوئی آپ کی غیبت کرے تو آپ بھی نہ کیجئے. آپ تاننے کو، تشنیع کو، مذاق اڑانے کو بات پسند نہیں کرتے تو یہ سب کام دوسروں سے بھی نہ کریں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مومنوں کے باہمی تعلقات بہت خوبصورت ہوتے ہیں. سورۃ توبہ 17 میں ہم نے دیکھا کہ مومن بعض مومن دوسروں کے دوست ہوتے ہیں. مومن مردیں، مومن عورتیں، اولیاء بعدہم الی بعد. تو اچھے رویے رکھیے. یہ نیکی کی وہ قسمیں جس سے بندہ بہت نیک لگتا نہیں لوگوں کو، لیکن حقیقت میں حسن اخلاق سے زیادہ بڑی نیکی کل قیامت کے دن نام اعمال میں کم ہی ہوگی. اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے. پھر ایک سوال یہ کہ مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ 6 بڑے حقوق ایک حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، دہرا لیجئے. سلام کرے تو جواب دیجئے، دعوت آپ کی کرے تو قبول کیجئے، چھینک کا جواب دیجئے، بیمار پرسی کیجئے، اچھا مشورہ دیں، اور جنازے میں شرکت کیجئے. اب دیکھیے ہم تو اس کو دنیا داری کہتے ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال جیسے ہوں گے نیتوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اچھی نیت سے کر لیں تو دنیا کا بھی فائدہ اور اجر بھی ملے گا. اسی طرح آپ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے 2442 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے عیب کو چھپائے گا. ہمیں کوئی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن نشر کیا جائے. تو آپ دیکھیے اگر یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روز یا کم از کم ہفتے میں دو بار بھی ڈسکس کریں تو یہ چیزیں پھر فطرت میں چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برا معاملہ نہیں کرتے. سوال یہ کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد ہم سے کیا مطلوب ہے، واٹ شوڈ وی ڈو؟ تو 3 چیزیں نوٹ کریں. نمبر 1، دوسروں سے طنز نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. اور اسی طرح سے وعدہ کریں کبھی تو پورا کریں. ایون اپنے بچوں سے وعدے کرتے ہیں تو پورے کریں، वरना उनका ट्रस्ट लूज होगा। और तीसरी बात है कि दूसरों को अच्छा मशवरा दें। मशवरा मांगने वाला, लेने देने वाला आपस में अमानतदार होते हैं। सिर्फ इसलिए मशवरा दे देना कि आपका कोई ज़ाती फायदा हो जाए तो ये किस्म की खयानत होगी। अल्लाह ताला हमें बाखलाक करे। अगली टिप लीजिए, गुनाह से दूर रहें। जी क्यों? इसलिए कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि गुनाह करके बंदा अपने दिल पर ठप्पा लगा लेता है, लेकिन जब तौबा कर लेता है तो इसका गुनाह तकब्बुर तोड़ने का जरिया बनता है। आपने गौर किया कितनी खूबसूरत बात है ये? यानी गुनाह जब होते हैं ना तो तकब्बुर भी टूटता है। बंदा ये नहीं कहता जी हम तो जद्दी पुश्ती नेक हैं, हम तो उलमा की औलाद हैं, हमने तो कभी गाना ही नहीं सुना, हमने तो कभी फिल्म नहीं देखी। नहीं, अगर गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे ना तो दिल पे ठप्पे, लेकिन गुना फिर तौबा, गुना फिर तौबा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तौबा से बेहतरी होती रहे तो तकब्बुर टूटेगा कि कोई बात नहीं, ये गुनाहगार भी इंसान है। बस अब इतनी रौनक आने लगती है आवाज़ में कि जो गोया के बाकी सारे तो जहन्नमी और गुनाहगार और हम सबसे नेक हैं। फिर इस तरह आदमी कजा कदर को मान लेता है, यानी कसरत इस्तगफार, तौबा व इनाबत, तवज्जो इलाल्लाह, इनके सार और नदामत का बायस हो जाता है। आदमी कजा कदर को मान लेता है और तौबा करने से अल्लाह के अस्माओ सिफात हसना यानी मसलन रहीम, गफूर और तवाब होना जाहिर हो जाते हैं। क्या पता चला कि जब कभी गुनाह हो जाए तो उस गुनाह के बाद तौबा करने से इंसान के अंदर बल्कि और खूबसूरती आती है। देखिए ना, अगर गुनाह ना किया तो अल्लाह के तवाब होने से आपको क्या लगे और उसके अल गफूर होने से क्या लगे? लेकिन ये भी नहीं मतलब कि आप गुनाह जान के करें, बल्कि हर मुमकिन गुनाह से दूर है। आप देखिए, गंदगी चाहते हैं कि लगे, जरासीम चाहते हैं कि हाथ को लगे, बस गुनाह को भी एक जर्म बना दें, एक वायरस बना दें, ताकि इंसान उससे हर मुमकिन अपने आप को दूर करे। सवाल यह कि गुनाहों के असबाब क्या हैं, रीजंस फॉर द सिंस, तो चंद सबब नोट कीजिए। पहली बात है, नफ्स की इताअत करते हैं। नफ्स अपनी असल के एतबार से गुनाहों की ही दावत देता है। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स अलअम्मारतुम बिस्सू, 13वें पारे की पहली आयत, 52 गालिबन सूरत यूसुफ। तो नफ्स की इताअत नहीं करनी। फिर दूसरी होती है ख्वाहिशात की पैरवी, इत्तबाए हवा। फिर अल्लाह ताला से कमजोर ताल्लुक, दीन से दूरी, ये सब गुनाहों के असबाब हैं। गुनाहों के असरात क्या हैं, इस पर एक पूरी बुक पढ़ाई हुई है इमाम इब्ने जौजी की है गालिबन, के गुनाहों के असरात। पहला असर आपको पता है उस किताब में क्या है? इल्म की मोहब्बत या इल्म की तलब खत्म हो जाती है। यानी गुनाहों के असर से बंदा इल्म से दूर होता है। आज भी अगर आपको इल्म से मोहब्बत नहीं या आपको इल्म की कोई दावत दी जाए और आपके बड़ा मुश्किल है, बोझल है, देखते हैं, तो मान लीजिए कि उसमें पीछे कोई गुनाह है। फिर इस तरह दिल पर मोहर लग जाती है, इबादात में दिल नहीं लगता। तकब्बुर और दिल की सख्ती इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। मजीद गुनाहों पर तबीयत माइल हो जाती है और नाजायज और हराम कामों में दिल लगने लग जाता है। अब एक और सवाल लिखिए, फिर इन गुनाहों से बचें कैसे? क्योंकि असल चीज़ तो बचना है ना। तो पहली बात है कि गुनाह के फौरन बाद तौबा, कसरत से इस्तगफार, अल्लाह ताला के अस्मा सिफात पे गौर कीजिए। शर्म आएगी, हया आएगी आपको भी मुझे भी, इतने बड़े मालिक, इतनी बड़ी हस्ती जिसने इतना कुछ दिया है, मैं उसकी नाफरमानी करती हूँ। फिर इसी तरह नफ्स का मुहासबा कीजिए, इतना अल्लाह ने मुझे दिया, इतनी नेमतें दी, और मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह मुस्तकिल साफ करते रहने से इंशाल्लाह गुनाह खत्म भी होंगे और दिल से उनकी रग़बत भी खत्म होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है 6069, मेरी तमाम उम्मत को माफ किया जाएगा, अल्लाह हमें भी उन्हीं में कर देना, सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों के। और गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने में ये भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और इसके बावजूद कि अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा दिया है, मगर सुबह होने पर वो कहने लगे, कै फुला, मैंने कल रात फुला फुला बुरा काम किया था, रात गुजर गई थी और इसके रब ने इसका गुनाह छुपाए रखा, लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। बुखारी की रिवायत 6069। एक कमेंट मैं भी दे दूं इस पे, कल के दौर में तो ऐसे ही होता होगा कि रात को गुनाह किया तो अल्लाह ने छुपाया तो अगले दिन जाके लोगों को बताए, आज तो स्पॉन्टेनियसली दिखाने लगते हैं। देखो हम किधर, हम किस हाल में, ये जो कुछ भी है मिनट मिनट की खबरें और एक एक स्नैप लेकर और एक एक चैट बताती है लोगों को कि देखो हम इस वक्त गुनाह की ये यादगारें इस जगह पे कायम कर रहे हैं। और जो सबसे बेहुदा चीज़ मुझे चंद दिन पहले देखने को मिली, अच्छी खासी इंसान की शक्ल है और आप उसको जानवर की और कुत्ते की शक्ल में बना के लोगों को दिखाते हैं। कभी सोचे इंसान, तो वाकई इस शायद का मतलब समझ आ जाता है कि लकद खलक नल इंसान फी अकसानी तकबीम लेकिन सुम मरदत ना हो असफल साफिलीन। अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक बनाया और इंसान जानवर बन जाए, ये सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग हंसेंगे, वरना रियल में ऐसे बन जाएं तो क्या क्या करेंगे। किसी को इंसान शक्ल ना दिखा सके तो छोटे छोटे बच्चों को भी इन चीजों से रोकी है कि एक झिझक होती है गुनाह की, पहली दफा लगती है बुरी, दूसरी तीन चार दफा एक चीज देख लें तो आप कहते इट्स ओके सब करते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, आपके अंदर से हया चली जाएगी, फिर आपको वो बुराई अब बुराई नहीं लगेगी। तो टेस्ट अच्छा रखिए। जैसे एक जगह बात हो रही थी तो मासूम बच्चे थे, 10-11 साल का एक बच्चा था, तो बात हो रही थी ऐसे ही टाइम की, तो मैंने कोई बात कह दी तो कहने लगा कि आंटी हम स्पिल देख सकते हैं। तो मैंने कहा स्पिल क्या होती है, तो कहने लगा गेम होती है। मैंने कहा उसमें क्या करते हैं, तो उसने बच्चे ने फिर मुझे बताया, थोड़ा मुझे पता भी था पहले, खेलते हैं एक दूसरे को मारते हैं, डॉचिंग ये वो, मतलब वो बिल्कुल कह लीजिए कि वर्थलेस चीज़ें थी। तो मैंने उसको बस इतना ही कहा कि बेटा हराम हलाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मोमिन का ये टेस्ट नहीं होता कि वो दूसरों को तकलीफ दे और उनका फन करे और मजाक उड़ाए। तो मोमिन को तो कोई अच्छे अच्छे खेल खेलने चाहिए, लेकिन ये बात सच है। दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों के अंदर पड़ते ही जा रहे हैं लोग, और अल्लाह ताला ने जो उनके पर्दे रखे हैं उसको खुद ही खोल देते हैं। तो इंशाल्लाह आज से भी अगर हम कोशिश करें पहले से बेहतरी की तो अल्लाह ताला मदद भी फरमाएंगे। अगला टॉपिक, रिस्क जरूर तलाश करें मगर हिर्स ना हो। जी, ये भी एक अहम बात है कि आज भी हमारे गमों का एक बड़ा गम रिस्क है। जॉब है नहीं, जॉब है तो दूर है, छोटी है, थोड़ी है, फुल टाइम नहीं, परमानेंट नहीं, वक्ती है, कोरोना की वजह से घरों में आ गए, जॉब्स जा रही, बैंकरप्सीज हो रही। आप थोड़े पे राजी रहे, अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े मसलों में नहीं डालेगा। तो कोशिश जरूर कीजिए लेकिन हिर्स ना रखे, क्योंकि जिस चीज की हिर्स होती है ना वो बंदे से जरूर छिनती है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला खालिक व मालिक की क्या शान रज़ाकियत है कि कीड़े को मिट्टी में, मछली को पानी में, परिंदे को फिजा में, और चींटी को अंधेरे में, और सांप को सख्त चट्टानों में रोजी देता। बताइए, जब इन मामूली चीजों को रिस्क मिल रहा है तो मुझे आपको नहीं मिलेगा। इब्नुल जौजी ने एक वाकया लिखा कि खजूर के दरख्त पर एक अंधा सांप रहता था, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में लेकर इसके मुंह में गोश्त डाल देती। क्या शान है इस परवरदिगार की जिसने इसे इस काम पर लगा दिया। कोई भी परिंदा अल्लाह के इशारे के बगैर अपने परों से नहीं उड़ सकता, सिर्फ तुम जैसे लोग इसकी इताअत से रूगरदा हो। यानी परिंदे नाफरमानी नहीं करते, इंसान ही है जो अल्लाह की बात नहीं मानते। शायर कहता है जब तुम सांप को मुंह से जहर निकालते देखो तो इससे पूछना कि किसने तेरे मुंह में जहर भर दिया है, और पूछना कि सांप तू कैसे रहता है जबकि तेरे मुंह में जहर भरा हुआ है। यानी हर एक का इंतजाम अल्लाह ने करके रखा हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मेहराब में रोजी शाम और सुबह मिलती थी। इनसे कहा गया या मरियमो अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये कहाँ से आता है। फरमाया वो अल्लाह के पास से है, बिला शुबा बगैर हिसाब के जिसे चाहता है इनायत करता है, आपकी रोजी की भी जमानत अल्लाह ने ली है, लिहाजा आप परेशान ना हो, अपने बच्चों को फाके के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इनको भी देंगे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया। इंसानों को ये मालूम नहीं कि बाप को, बेटे को, सब को वो रिस्क देता है जिसने ना किसी को जना ना वो जना गया। इसी तरह अल्लाह ताला बड़े खजानों का मालिक है, इसने रोजी की जमानत ली है तो फिर परेशान क्यों हो, जबकि जिम्मेदार अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के पास रोजी तलाश करो, इसकी इबादत करो और इसका शुक्र अदा करो, वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। तो क्या पता चला, रिस्क जरूर तलाश कीजिए, और खास तौर पे ये मर्दों का काम है। अल्लाह उनको सलामत रखे, वो रिस्क ढूंढें, तलाश करें, लेकिन हिर्स ना लगाइए कि कब कहाँ, और क्योंकि माल जितना कम होता है ना उतना ज्यादा लगता है, और जितना ज्यादा होता जाता है उसका होका इतना बढ़ जाता है कि फिर इंसान का दिल घुटने लगता है। जिस खुशी से पहले दूसरों को देता था अब उतनी खुशी से नहीं देता। ये एक अल्लाह ने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है। सवाल यह है कि रिस्क कौन देता है आपको? मुझे कोई बाबा जी हैं रिस्क देने वाले? कोई बैंक रिस्क देता है? कोई हुकूमत देती है? नहीं, वही देता है जो कीड़े को पत्थर में देता है, परिंदों को पेट भरकर घर वापस लाता है, सुबह भूखे जाते हैं, बच्चे को माँ के पेट में जो रिस्क देता है, और व्हील मछली को रोजाना 3600 किलोग्राम मछलियां जो खिलाता है। ये एक रिसर्च है कि एक व्हील मछली एक दिन में 3600 किलो गोश्त खा जाती है, यानी छोटी मछलियों को खाती रहती है। उकाब को पहाड़ों की चट्टानों पर रिस्क कौन देता है? क्यों कहते हैं कि तू शाहीन है, परवास है काम तेरा, और उसी के अंदर आता है ना कि शाहीन जो है उसके लिए आबो दाना कोई चीज नहीं है, उसके तो मकासिद ही बहुत बड़े होते हैं। और हजरत मरियम को बेमौसम फल किसने दिए? तभी तो अल्लाह ताला एक सवाल करते हैं सूरह यूनुस 31 में, क्या कह दीजिए कि कौन है जो तुम्हें आसमानों जमीन से रिस्क देता है, या कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, कौन है जो हर काम की तदबीर करता है? तो वो जरूर कहेंगे फसयकूलूनल्लाह। तो फिर इनसे पूछो फन्ना तूफकून, फिर क्यों नहीं डरते, तुम किधर दबक रहे हो? इसी तरह सूरह फातिर की आयत 3 में आता है कि अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राजिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क दे, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ बहके फिरते हो। तो करें क्या? सवाल लिखिए, कस्बे हलाल अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, ये क्या होता है? हलाल और जायज तरीके से रोजी कमाना। हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, रिस्के हलाल से दिल नूर से मामूर होता है, हिकमत और अक्लमंदी में इजाफा होता है, शराफत की अलामत है और इज्जत की दलील है। दुआ कीजिए हमारे मर्द हलाल रिस्क लेकर आए। हमसे क्या मतलूब है? पहली बात है तवक्कुल करो तो परिंदों जैसा, अंबिया कराम की तरह हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करो, जायज वसीले इख्तियार करो और बच्चों को हलाल और तैयब खाने की आदत डालिए। और वो शेर है अल्लामा इकबाल का, ये कहते हैं कि तायरे लाहूती इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा शेर है, कभी समझ नहीं आया था, अब समझ आ गया कि बाज दफा इंसान एक बहुत बड़े मिशन को छोड़कर, एक बहुत बड़े काम को पीछे डालकर सिर्फ रिस्क कमाने के लिए घर से निकल पड़ता है, तो जिससे परवास ही आपकी हल्की हो गई उससे तो मौत ही अच्छी। तो बहरहाल जिंदगी का बहुत बड़ा गम और हम रिस्क नहीं है। सिलसिले सहीहा की रिवायत है 2263, जाबिर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से यूं भागे जैसे वो मौत से भागता है, तो इसका रिस्क इसे यूं पा लेगा जैसे इसे मौत पा लेती है। यानी मौत से मफर नहीं है ना, इसी तरह रिस्क से भी मफर नहीं है। जितना आपके नसीब का है, जब जहां अल्लाह ने लिखा है आपको मिल के रहेगा। सोचें जरा, जो पढ़ा है उसका खुलासा करें, अपने दिल दिमाग में लें, क्या महसूस होता है आपको? इतनी ज्यादा चीजें हम पढ़ते हैं, इतनी टिप्स इकट्ठी आती है ना, तो हमें समझ आता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप एक एक बात पे गौर करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक एक जेम है। कितने ही लोग हैं जो दुनिया में परेशान हैं, खुबे हुए हैं दुनियादारियों में, गमों में, फिक्रों में, परेशानियों में, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो याद रखिए कि हर दुख तकलीफ से निकलने की बुनियादी चीज नमाज है। और जहां तक नमाज की बात है, तो दिल को राहत देने, तकवीत पहुंचाने, शरे सदर और खुशी और इज्जत देने में इसकी कोई मिसाल नहीं। आप कहेंगे कैसे? नमाज तो हम खड़े हैं, बिस्मिल्लाह कुल वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ नमाज एक बड़ी किताबी सी नमाज है, इसलिए तो नमाज की किताबें भी मिलती हैं। हालांकि नमाज तो बहुत फर्क चीज है। नमाज में दिल और रूह का ताल्लुक अल्लाह से होता है। इसके जिक्र, मनाजात और इसके दर पर जाने और इसकी बंदगी में अपने पूरे बदन को लगा देने में, जिसमें के हर उज्व शरीक रहता है, और माँ सिवा से सारे रिश्ते और ताल्लुक काट कर रब्बे कायनात की तरफ मुतवज्जे होने में, جو قیف اور سرور ہے وہ بیان سے باہر ہے. نماز دشمن سے راحت دیتی ہے اور وہ ان مفرحات, مفرحات کیا ہوتی ہیں؟ فرحت بخش چیزیں, جیسے شربت اور جوسز کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ہم. اور مقوی, مقوی کے قوت سے, انرجیٹک فوڈ. مقوی دواؤں میں سے ہے جو قلوب کو راس آتی ہے. مریض قلب تو بیمار جسموں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں صرف کثرت خوری سے ہی مزہ ملتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو خوب کھانے کا شوق ہوتا ہے. اس لحاظ سے نماز دنیا آخرت کے فوائد کے حاصل کرنے میں بڑی مددگار ہے. دنیاوی اور اخروی مفاسد یعنی فاسد چیزوں کو دور کرنے میں بھی وہ بے خطا نسخہ ہے. نماز ہی تو ہے جو گناہوں سے روکے, دلوں کو شفا دے, جسم سے بیماری کو بھگائے, دل کی انگیٹھی گرم کر دے, چہرے کو روشن کرے, جوارح کو چست بنائے, رزق کا ذریعہ بنے, ظلم کو دور کرے, مظلوم کی مددگار ہو, شہوتوں کی آگ بجھائے, نعمت کی حفاظت کرے, بدبختی دور کرے, رحمت لائے اور زحمت کو بھگائے. کبھی آپ نے نماز کی اتنی خوبصورت باتیں سوچی؟ ہمیں تو ایک بوجھ لگتی ہے. تو نہیں, نماز دل کی راحت, تقویت کا باعث, شرح صدر اور خوشی کا سبب ہے. کہیے ہمیں بھی اللہ اس نماز سے خوشی دے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز دل اور روح کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے, دلوں کو شفا دیتی ہے, دل کو حرارت دیتی ہے, چہرے کو روشن اور جوارح کو چست کرتی ہے. یعنی ایک دم اندر طاقت آتی ہے. آپ دیکھیں نماز نہ پڑھے نا, سست, کسل مندی, پیچھے پیچھے گرے گرے. نماز پڑھ کر دیکھیے, ایک دم آپ کو لگتا ہے میں فریش ہو گئی. واقعی وہ ایک غسل لے کر آنے والی کیفیت ہے کہ اس کے بعد سستی نہیں رہتی, گندگی نہیں رہتی. تو نماز پڑھنے سے بھی دل میں, جسم پہ کوئی گندگی نہیں رہتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نماز مظلوم کی مددگار, کیونکہ اس کی کوئی سنتا جو نہیں, تو وہ نماز میں کہہ دے گا یا کا نعبد و یا کا نستعین. شہوتوں کی آگ بجھانے والی, مثلا کوئی گناہ کے نشے میں ڈوبا ہوا لیکن نماز ہی ہے, جو ہی نماز کا وقت آئے گا چھوڑے گا نا اس جگہ کو. اچھا میں نماز پڑھاؤں, جو ہی نماز پڑھنے کے لیے گیا ماحول بدل گیا. خالد یاسین صاحب, ایک انہوں نے واقعہ سنایا تھا, بہت پہلے کا سنا ہوا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ نماز کیسے بے حیائی سے روکتی ہے. تو انہوں نے مثال دی کہ ایک لڑکا ہے, اس کو محبت ہو گئی ایک نان مسلم لڑکی سے. اب اسے بیٹھا ہے, بات چیت کر رہا ہے, وہ بے تکلف ہوتی ہے. اتنے میں ظہر کا وقت شروع ہوا. وہ کہتا ہے کہ ڈارلنگ تم بیٹھو, میں بھی آیا. اوکے اوکے نو پرابلم, جاؤ. وہ گیا نماز پڑھنے, آدھا گھنٹہ لگا کے آیا. اٹس اوکے, آپ ابھی تھوڑی دیر بیٹھے, بات چیت, محبت ہوئی. اس نے کہا اوکے ڈارلنگ آئی ہیو ٹو گو, ویئر آر یو گوئنگ. اب آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں. وہ اس ٹائم ٹو پرے. واہ, پھر یس, مائی گاڈ از کالنگ می. کہتا وہ جائے گا, ابھی وہ وہاں جا کر اس کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آئے گا. ابھی تھوڑا بھی وقت نہیں گزرا, مغرب ہوگی. اس سے پہلے کہ یہ جائے مغرب کے لیے, وہ لڑکی اس کو چھوڑ کے جائے گی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے وتھ یو. یہ ہے ان الصلات تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو شہوت کی آگ کیسے جلتی رہے جب بیچ میں نمازوں کے وقت آتے رہے. پھر نعمت کی حفاظت کرتی ہے. آپ کو مجھے جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں اس کی حفاظت اللہ سے نمازیں ادا کر کے, نوافل ادا کر کے, شکرانے ادا کر کر کے کیا کریں. اور سورۃ عنکبوت 45 ہے یہ, یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور جتنی نماز اچھی دین اچھا. آپ خود بھی اپنا معیار لے لیجئے, ہاؤ ریلیجس آر یو, اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے, آپ کو اللہ سے کتنا پیار ہے یا اللہ کو آپ سے کتنا. سب کے جواب میں معیار نماز کو بنائیے. جتنا نماز سے آپ کو پیار ہوگا اتنا انشاءاللہ باقی چیزیں بھی آسان ہوں گی.